तो भगवान श्री कृष्ण के वो चरण कमल कालिये के फणों पर अखंड सुमधुर तालबंध की रचना करते हुए और वो पैर पैरों से नृत्य होने लगा। तन मूर्ध रत्न निकर स्पर्शाति ताम्र पादाम्बुजु खिल कला गुरु नर्त अखिल कला के गुरु। जितनी कलाएं हैं सब श्री कृष्ण के कला समुद्र के एक सीकर भी नहीं। तो भगवान लगे नाचने और नृत्य में इन्हें भी बड़ा आनंद आया। तो नीलमणि के बिंबा विडम्बित बिंबा फल भी जिनके सामने अत्यंत लज्जित हो जाते हैं ऐसे अरुणिम अधरों पर स्मित आ गया भगवान के। भगवान के जो अरुणिम अधर थे उन पर हंसी की मंद हंसी की मधुर हंसी की रेखा आ गई। ग्वाल बाल सब देख रहे हैं और कन्हैया नाच रहा है और नाचता हुआ हंस रहा है। पर डर बड़ा भारी है कि ये सांप के फणों पर नाच रहा है ना, न मालूम फण ऊंचा करके कहीं सांप काट ले। पर जब नाचते देखते हैं तो फिर भूल जाते हैं। तो भगवान के नेत्र कमल मन हंसने लगे, मुख पर हंसी आ गई, नेत्रों में हंसी आ गई। खिलती है ना आंखें, आंखों में हंसी आती है, आंखों में रुलाई आती है, आंखों में गुस्सा आता है। आंखों की आकृति से आकृति विज्ञानी लोग जान लेते हैं कि इस समय ये काम में है या क्रोध में है लोभ में है। तो भगवान के वो हंसते हुए नेत्र अंतरिक्ष की ओर मुड़े और फिर मनोहर नृत्य की गतियों का प्रकाश होने लगा। तो कहते हैं भाई ये नाट्य बड़ा अद्भुत, जिनकी नित्य नित्य चरण सेविका ये माया नटी सारे ब्रह्मांड को नचा रही है। जिस माया नटी के नियंत्रण में ब्रह्मा शिव सुरेंद्र मुनीन्द्र सभी निरंतर नाच रहे हैं, ये ब्रह्मांड का प्रत्येक सूक्ष्मतम धूल कण से लेकर के महान सुमेरु और एक अत्यंत क्षुद्रतम अणु परमाणु से लेकर ब्रह्मा पर्यंत चेतन समुदाय, ये सब का सब जिस माया के नियंत्रण में निरंतर नृत्यरत है, वे मायाधिपति सकल कलाधिष्ठान भगवान बजेन्द्र नंदन आज स्वयं काली फण पर मधुर नृत्य कर रहे हैं। मधुरता है, तांडवता है। काली को ऐसा मालूम होता है कि मानो एक एक बार उसके मस्तक पर बड़ा भारी और बड़ा जला देने वाला वज्र गिर रहा है और देवता सारा अमर मंडल ये देख रहे हैं कि भगवान का बड़ा सुंदर मनोहर मधुर नृत्य हो रहा है। अब यहां भगवान का नृत्य ही हो रहा था, गाने बजाने वाला तो कोई था नहीं और बंसरी भी अभी इन्होंने खोसे ही रखी थी। तो वाद्यम भी नहीं वो सुमुख ही नहीं वो चारित थी थी शब्द ही प्रभु नृत्यति तद्वयम कम समयम प्रतिष्ठिता इति देवताओं ने गंधर्वों ने। और ये लटनागर को जब नाचते देखा तो इनके मन में आया कि हम भी इसमें ताल में साथ दें। अरे नाचने के साथ बाजा बजे ठेका लगे तब वो अच्छी तरह से नृत्य हो। तो भगवान को तो नाचने के साथ किसी वाद्य की आवश्यकता नहीं है। ये गवैये लोगों को मामूली नाचने वालों को बोले ठेका नहीं लगता तो नाच नहीं आता उनको। पर यहां पर भगवान को किसी बिना झंकृति की किसी ताल मृदंग की किसी ठेके की आवश्यकता नहीं। न सही वाद्य यंत्र ये अपने मधुमेह कंठ सही थई थई करने लगे, अपने आप ही ताल देने लगे, दिग दिगंत गूंज गया इनके श्रीमुख की से निकले हुए मधुर रव से। तो तदीजन जो रहे गंधर्व सिद्ध सुर चारण सुर सुंदरिया, इन सब के प्राणों में एक निनाद उठा और वे नील सुंदर के नीलमणि के थई थई नाद और शब्द के साथ ही उनकी स्फूर्ति हुई। यो हो, ये तो बिना ही वाद्य के और अपने मुख से ही थई थई उच्चारण करते हुए प्रभु नृत्य कर रहे हैं, फिर हम लोगों के लिए ऐसा अवसर कब आएगा, हम फिर किस चीज की बात देख रहे हैं, ऐसा नाचने वाला मिले और फिर उसके साथ ताल मिला लें, इससे बढ़कर सौभाग्य देवों का, किन्नरियों का, किन्नरों का, गंधर्वों का होगा कहां से। तो सारे के सारे ये नाच उठे, तो प्रेम मग्न उन गंधर्वों ने नीलमणि की ताल और लय के साथ अपनी ताल और लय मिलाकर मधुर मधुर तान छेड़ दी। स्वर्ग के चारण मृदंग पणव आनक इत्यादि बाजे बजाने लगे और श्री कृष्णचंद्र के वो नित्य चरण विन्यास के साथ साथ एक एक करके ताल देने लगे। ये मधुर मधुर गीत गाते हुए तमाम सुरगण और सुर सुंदरियां वो नंदन कानन के मंदार पारिजात आदि पुष्पों को चयन करके रास रासी उन्होंने अपने अपने सब आंचल भर लिए, अंजलि भर ली और भगवान के चरण कमलों पर पुष्पों की मानो अविरल धारा बरसने लगी। अब वो देवता और देव सुंदरियों के द्वारा वो प्रक्षिप्त उत्सर्गीकृत वो स्नेह सिक्त स्नेह से सने हुए वो कुसुम समूह से पुष्पों से और भगवती कालिंदी का प्रवाह मानो भर गया, तमाम फूल ही फूल हो गए वहां पर और सब के सब सिद्धगण वहां पर खड़े हो गए आकाश में अंतरिक्ष में और उन लोगों ने ऊपर से ही हरिचंदन कुमकुम सौरभमय चूर्ण इत्यादि बिखेरने शुरू किए, पूजा चलने लगी। तब अपार शुरू हुआ, तम नर्त मुदित मवेक्ष यदा तदा तदीय गंधर्व सिद्ध चारण देव बधवा प्रीत्या मदंग पणवान कवा जगीत पुष्पोपहार भी ससूप से दु भगवान की पूजा होने लगी। भगवान नृत्य कर रहे हैं, गंधर्वों का स्तवन चल रहा है, गद्य पद्यमयी भगवान की दिव्य स्तुतियां हो रही हैं, उसके अनुरूप ही नृत्य के अनुरूप ही ताल संकेत की व्यंजना चल रही है और भगवान अखिल कला निधि भगवान श्री श्याम सुंदर उसी ताल और वृत्त से बंधे हुए मानो नृत्य कर रहे हैं। अब वो जब ये ताल में ताल मिलावे तो इनकी ताल को कौन बिगाड़े और ये अपनी ताल से नाचे तो इनका साथ कौन दे। तो अभी तो ये अपनी ही अभी तो ये ताल में ताल मिला के नाच रहे हैं, एक फण से दूसरे फण पर तुरंत पैर पड़ता है, एक फण उठा उस पर पैर रखा, दूसरा फण नमित हुआ उससे उठा तीसरे पर रखा, इस प्रकार से एक फण से दूसरे फण पर भगवान के चरण कमल चले जाते हैं ये दिखाई देता है, पर वो गए हैं ठीक ठीक ताल के विराम के समय ही, ऐसा नहीं कि बेताल पैर उठा और बेताल पैर पड़ गया हो। सिद्ध चारण गंधर्व इत्यादि जो हैं, कोई भी देख नहीं पाता कि कैसे चरण उठा और कैसे गिरा, परंतु ठीक ताल से हुआ काम। अब इन्होंने देखा कि अपना जो नृत्य है ये इन सिद्ध चारणों की और गंधर्वों की ताल पर ही रहे, तो फिर श्री कृष्ण का अद्भुत नृत्य क्या हुआ। तो इन्होंने फिर अपनी कला, ये तो कला समुद्र हैं, तो गंधर्वों ने देखा कि ठीक ताल पर नाच रहे, इन्हें नाचना आता है। तो भगवान परम स्वतंत्र उनका नृत्य अत्यंत मादक अत्यंत मनोहर। चाण गंधर्वों ने कहां शिक्षा पाई इनके नाच की, वो तो बेचारे किसी कला के ग्रंथ को लेकर और किसी कलाविद से शिक्षा पाकर कला सीख रहे हैं। कलाओं का उद्गम स्थान, कलाओं का झरना, कलाओं का भंडार, कलाओं के समुद्र तो इनके चरण कमल हैं। तो अब इन्होंने जब अपनी तान छेड़ी, अब गंधर्वों की साध्य नहीं रही कि इनके साथ ताल मिला सकें, अब इनके साथ कंठ से कंठ मिलाकर गा सकें। उनके वाद्य यंत्र ताल में ताल मिलाकर चल सकें, ये तो इनके ताल पाठ का उच्चारण भी कठिन हो गया। निज कल्पितया गत्या नृत्य कृष्णो यथा स्वैरी न तदन रूपम गातुं प्रतिमप्यपि शेकुहु। अरे ये ताल पाठ का संकेत भी उच्चारण नहीं कर सकते ये, तो कौन इनके ताल में साथ दे। तो अब तो ये पहले तो काली नाग के केवल फणों के उठने पर, अब तो काली के अंतस्तर के स्पंदन के अनुसार ही इनके चरण उठने लगे। कौन जाने इसको काली नाग के अंतस्तर में क्या स्पंदन, कब कैसा क्या हो रहा है, इसको न सो जानते हैं न गंधर्व जानते हैं, जानते हैं अंदर की देखने वाले भी यही। तो भगवान का विचित्र नृत्य होने लगा, गंधर्व भी सारे देखकर चकित हो गए कि ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, ये इसका क्या नाम रखे नवीन नृत्य ये भगवान का। तो नृत्य के आवेश में भगवान नई नई भंगिमा नई नई गति का सृजन करते हुए अत्यंत मनोरम नृत्य करने लगे। अब लेकिन काली नाग पर जो जो उसके फणों पर चरण टिकते हैं, उसके फण उसका उसके मस्तक मानो चूर चूर हुए जा रहे हैं। तो एक ओर तो भगवान अपने नृत्य का आनंद ले रहे, एक ओर अपनी नृत्य कला से समस्त नृत्य विद्या विशारदों को विमोहित कर रहे, और साथ ही भगवान ये खल संयमन की लीला भी इनकी चल रही, दुष्ट दमन की लीला जो है दुष्ट दलन की, ये भी साथ साथ संपन्न होती जा रही। मनो इनके फणों पर चरणाघात से काली के जीवन दीपक मानो बुझते हुए से जा रहे, मंद मंद गति उनकी हो रही। कितनी देर तक बेचारा सह सकता, ये दक्षिण ननमतंग सतई कशिष्ण तत्तन ममद खरदंड धरो नृपात चीनायुषो भ्रमत उल्वन माचितो संग नस्तो भमन परम कश्मल मापन। बस जिसको मस्तक को उठाया उसने उसी पर इनका पैर गया। तो उसके मुंह से जहर उगला जाने लगा, खून बहने लगा और बड़ी बुरी दशा उसकी बिचारे की हो गई, उसकी आयु क्षीण सी होने लगी। अब उसके नाकों से अनर्गल खून की धारा बहने लगी, वो अत्यधिक भार से मानो मूर्छित सा होने लगा काली नाग। अभी आकाश से तो फूलों की वर्षा हो ही रही है, पुष्पी प्रभु जो यही पुराण बरस रहे हैं फूल, अब इस देवद्रोही काली का गर्भ चूर हो गया। देव समाज तो देख के प्रसन्न है, उनकी तृप्ति नहीं हो रही है नीलमणि के चरण सरोवरों में कुसुमों का अभिनंदन करने में, वो तो फूल बरसाते बरसाते कभी लगाते नहीं और बरसावे, दौड़ दौड़ करके फूल ले आते हैं नंदन कानन से ताजे ताजे। और भगवान पुराण पुरुष के पादारविंद में अर्पण कर रहे हैं, लेकिन वो अर्पण ही कर रहे हैं ऊपर से, ये झांकी तो यहां मिल रही है और नृत्य हो रहा है काली के मस्तक पर। देवताओं का तो हृदय ध्यान में स्पर्श नहीं कर पाता इन चरण कमलों का, लेकिन देवता बड़े प्रसन्न हैं। काली नाग का तमाम बल नष्ट हो गया, उसका गर्भ शमित हो गया, शारीरिक शक्ति उसकी प्राय चली गई, क्षीण हो गई, निराश हो गया कि अब इस प्रकार का तो कभी अवसर जीवन में आया नहीं, ये अंतिम क्षण है बेचारा यूं। तो जब मनुष्य में निर्वेद आता है, जब मनुष्य के सारे साधन, सारा शक्ति बल कुंठित हो जाता है, तब वो किसी विशेष शक्ति का सहारा ढूंढता है। खास करके जो लोग सांसारिक भोगों को अधिकार, अर्थ, बल इत्यादि को प्राप्त करके जो उसके मद में पूर्ण रहते हैं, उनका जब तक मद चूर्ण नहीं होता तब तक तो वे समर्थ की ओर, भगवान की ओर कभी ताकते ही नहीं। वो ताकते निरंतर अपने भौतिक बल की ओर, अब की हम कर लेंगे, इस कला से, इस कौशल से, इस विद्या से, इस शक्ति से, न मालूम किस किस भौतिक साधन का वे स्मरण करते हैं और निरंतर उसी का आश्रय करते हैं। और भौतिक बल का आश्रय करने वालों के पास बच जाती दो ही चीज, ऐसा कर लेंगे और जो बाधक होगा उसको नष्ट करेंगे। काम क्रोध परायणाः, असुर भावापन्न जो प्राणी होते हैं, जिनके जीवन का संबल होता है केवल सांसारिक प्राणी पदार्थ ही, वे लोग भगवान का आश्रय नहीं करते, भगवान की ओर ताकते नहीं, बल्कि भगवान को भी अपने बुद्धि कौशल से, छल बल से परास्त करना चाहते हैं, भगवान का नाम भी मिटा देना चाहते हैं, यद्यपि उनके मिटाए मिटता नहीं, पर जब भगवान की महती कृपा से उनका बल दर्प चूर्ण होता है, तब उनके हृदय में एक सुअवसर आता है, भगवान के चरण नख चंद्र मणि का आलोक वहां पर आ जाए, उस प्रकाश से उनका अंतस्तर उद्भासित हो उठे, उनके हृदय में भगवत चरणारविंद नखत ज्योति का प्रकाश उजियाला हो जाए, तब वो समय आता है। तो कार्य का मन, कार्य की बुद्धि, उसका शरीर, उसकी इंद्रियां, उसके प्राण जब विकल हो उठे, तब उसके हृदय में एक ज्योति जगी, और उसी प्रकाश में उसने अब पहचाना कि तेरे सिर पर कौन नाच रहा है। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगान। अब शरीर में ये शक्ति तो रही नहीं कि वो स्पंदित भी हो सके, अब वो शरीर अपने आप नमित होकर के, झुक करके भगवान के चरणों में साष्टांग कर ले, उनके चरण सरोजों पर न्यौछावर हो जाए, ये शक्ति भी उसमें अब नहीं रही। अब मानो अंतिम श्वास था तो मन ही मन भगवान का स्मरण करके वो पुकार उठा। अब वो जो नाग वनिताएं थी, नाग वधुएं, ये पहले अपने आ चुका है कि वो बहुत दिनों से श्री कृष्ण चरणारविंद की अभिलाषिणी थी। ब्रजनंदन जब पधारे उनके नागालय में, उस समय उनको देख करके उनके चित्त में बड़ा आकर्षण तो हुआ, हर्षोत्फुल्ल हो गया उनका हृदय, परंतु वे पहचान नहीं सकी। उनके मन में यही आया कि बच्चा छोटा सा, कितना सुकुमार, कितना मोहन, कितना मनोहर, और ये हमारा पति कितना क्रूर निर्दय, ये अभी अगर जाग जाएगा तो इस बच्चे के प्राण नहीं रहेंगे, तो बच्चे के प्राण रक्षा के लिए उसकी मोहनी सूरत पर न्यौछावर होकर के इन नागवधुओं ने उससे कहा बच्चे से कि भैया तुम जल्दी भाग जाओ, ये जग न जाए, हमारे स्वामी तुम जल्दी भागो। पर वो तो भागने के लिए आया ही नहीं था, वो तो आया था कृतार्थ करने के लिए, भागता कैसे, तो भागा नहीं। उसके बाद ये लीला संपादित हुई सारा का सारा बल दर्प चूर्ण हो गया। अब अकस्मात उन नागबधुओं के हृत्तल में भी एक आलोक एक प्रकाश जाग उठा। उन सब ने देख लिया कि हमारे चिर जीवन के जो आराध्य प्राणाधार हैं वही तो ये हैं। परंतु साथ ही उनकी दृष्टि गई अपने पतियों की ओर अपने पति की ओर तो देखा कि ये तो अब महाप्रयाण का समय उपस्थित मालूम होता है। अत्यंत शक्तिहीन हो गया सारा शरीर जिसके एक एक श्वास से श्वास की फुत्कार से तमाम जल उद्वेलित हो उठता। वो मानो निश्वास सा हो रहा है जड़ सा हो रहा है स्पंदन शक्ति उसमें नहीं हिलडोल नहीं सकता। वो इस प्रकार की अवस्था जब उन्होंने देखी तो वे नागबध हुए। एक और भगवान के चरण प्रांत को पाकर पहचान कर कृतार्थ हो रही और मन में आश्वासन भी आ रहा कि जिन भगवान के चरण का स्पर्श काली के मस्तक ने प्राप्त कर लिया वो काली तो अब सदा के लिए सुरक्षित हो गया। पहले भगवान के हस्तकमल टिके फणों का दमन किया ना भगवान ने बाया हाथ मस्तकों पर उसके रखकर उसके बाद ही चरण सरोवर हो तो न मालूम कितनी देर तक किस किस प्रकार से ये फणों पर नाचते रहे तो काली तो सदा के लिए सुरक्षित हो गया। ये रक्षा जीव की तभी तक है जब तक वो भगवत चरणारविंद की सुरक्षा में नहीं आता तब तक तो ये नित्य ही आरक्षित है। अपने को सुरक्षित माने पर नित्य आरक्षित है। पर जब भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो जाता है किसी प्रकार वे चरण कमल टिक जाते हैं मस्तक पर तो सुरक्षित हो जाता है। तो नागबधुओं के मन में दृढ़ हो गया निश्चय ये कि अब ये ठीक ठीक सुरक्षित हो गया। पर साथ ही मन में दो बातें पैदा हुई कि भगवान श्याम सुंदर सामने तो कुछ कहकर वाणी को सफल किया जाए ये मौका कब मिलेगा। और दूसरे करुणामय की करुणा जगाने के लिए कोई वाणी काम नहीं करती वो तो स्वयं करुणामय है ही। परंतु ये सती साध्वी देवियां हैं ना पति का मरण काल उपस्थित सा जी जाए बड़ा अच्छा नहीं तो भगवान विशेष कृपा करें और भी। तो वे सब नागबधुए नम्र स्वर में भगवान की स्तुति करना उन्होंने आरंभ किया। वे बोली न्यायो हि दंड कृत किल विशेष तवावतारम खल निग्रहाय रिपोसुता नाम तुल्य दृष्टेर्धत्से दमं फलमिवानुशंसन अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हिनो दंडो सतां ते खलु कल्मषापः यद्दंडशूकत्वममुष्य देहिनः क्रोधोऽपित्यनुग्रहे एव सम्मतः तपसु तप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकंपया यतो भवास्तुष्यति सर्वजीवः कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः जदवांछया श्रीललनाचरतपो विहाय कामानुचरं धृतव्रता न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेश्यं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजप्रपन्नाः। देवियां नागबधुएं कहने लगी मानो उनकी जिह्वाओं पर भगवान की प्रेम रस धारा का स्पर्श हो गया। ये भगवान के स्तवन के साथ साथ ही भगवान की कृपा और भगवत कृपा प्राप्त भगवत प्रेमियों के हृदय की धारणा अनुभूति इसे भी व्यक्त करने लगी। ये स्तुति क्या है मानो एक बड़ा सुंदर पाठ है भगवान की ओर जाने वालों के लिए। भगवान का स्वरूप जाने और भगवान के से क्या किस प्रकार से प्रेमी जन व्यवहार करें ये बताने के लिए। तो नाग पत्नियां बोली, महाराज ये तो सर्वसिद्ध बात है, सब जानते हैं कि आपका ये अवतार हुआ ये दुष्टों के दमन के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए, और जो अपराधी हो उसको दंड देना उचित ही है, खल निग्रह के लिए आपका अवतार। लेकिन महाराज ये आपके दंड में औरों के दंड में बड़ा अंतर है। दूसरे लोग किसी को दंड देते हैं तो वो दंड देते हैं शत्रु मानकर, उसके द्वारा उसके प्रति मन में विपरीत बुद्धि रखकर। पर आपका दंड कैसा है, जैसे माँ बच्चे को मारे, कभी माँ स्नेह भरे हृदय से और बच्चे को दंड दे, बच्चे को डांट है, तो वो दंड है या स्नेह धारा है? तो दूसरों के मनों में तो शत्रु और पुत्र में भेद है, पर आप में शत्रु और पुत्र का भेद नहीं है। आपके मन में सभी के प्रति, जैसे पुत्र के प्रति माता की पिता की स्वाभाविक स्नेह धारा बहती है, इसी प्रकार तो भगवान आप अगर किसी को दंड देते हैं, रिपु सुता नाम पितुल्य दृष्टि, समान दृष्टि है पुत्र और शत्रु में, तो वो दंड देते हैं किस लिए, कि उसके पापों का प्रायश्चित कराने के लिए, उसका परम कल्याण करने के लिए, और कोई हेतु नहीं। और महाराज आप जो कुछ करते हैं उसमें केवल आपकी कृपा ही भरी रहती है। अनुग्रहोयम भवत कृतो हिनो, ये हम लोगों पर आपका बड़ा ही अनुग्रह हुआ, माने भगवान के द्वारा जो कुछ भी हमारे लिए विधान होता है वो प्रत्येक विधान हमारे मंगल के लिए होता है। भगवान मंगलमय हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, भगवान निर्भ्रांत हैं, और साथ साथ भगवान हमारे सुहृद हैं। अमंगल उससे हो जहां मंगल हो, अरे कोई अमृत के भंडार में से किसी को जहर देना चाहे तो देगा कहां से, जहर उसके पास है ही नहीं, जहर देगा कहां से। इसी प्रकार से भगवान की प्रभु मूर्ति कृपामयी है, मंगलमय भगवान, कृपामय भगवान, ये कृपा ही करते हैं। न तो इनसे भूल होती है कि भाई कृपा करते करते कहीं भूल कर कृपा कर दें, और किस बात में हमारा मंगल इसको वो न समझे न जाने और जानकर कर न सकें। सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, निर्भ्रांत हैं और सुहृद हैं। तो वो कहती हैं कि भगवान आपका हम लोगों पर अनुग्रह ये हुआ, ये आपका कृपा प्रसाद ही है। दुष्टों को जो आप दंड देते हैं उसके साथ उनके सारे पाप कलमश को आप हर लेते हैं। ये सर्व के ये जो सांप हमारा पति, इसके अपराधी होने में तो कोई संदेह नहीं, बड़ा अपराधी है। मैं अपराधी होता तो सांप ही क्यों बनता, सर्प की योनि ही अपराधी होने से इसको मिली। परंतु महाराज हम लोगों ने ये समझ लिया, हम जान रही हैं कि आपका जो ये क्रोध है ये अनुग्रह है। निश्चित क्रोधोपिते अनुग्रह एवं सम्मतः, आपका जो ये क्रोध है ये भी आपका अनुग्रह है, ये हम लोगों ने जान लिया समझ लिया। तो बोले महाराज हम लोगों को भी कुछ गर्व होता है और इस सर्प के जीवन पर भी हम लोगों को गर्व होता है। हम लोगों को ऐसा मालूम होता है कि अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने यहां तो बड़ा मानी और वहां वो मान रहित होकर दूसरों का सम्मान करते हुए इसने कोई बहुत बड़ी तपस्या की थी। भगवान के लिए तप करने वालों में दो बात होनी चाहिए, भला स्वयं अमानी हो दूसरे को मान दे, और जो कहीं भक्ति के ही मान में आ जाए, अभिमान में आ जाए, उसकी भक्ति जाती रहती है। बोले हम प्रेमी और सारे अप्रेमी, हम भक्त और सारे अभक्त। ये भक्तों में भी इस प्रकार का जब गर्व आता है तो भक्ति देवी हटने लगती है। भक्त तो होता है तिना जब सुन ये चीन तरोरी वशिष्ठ न अमानी न मान देना। तो वो नागवध में कह रही है कि भगवान हम लोगों को ये मालूम होता है कि अवश्य इसने इस सर्प ने पूर्व जन्म में स्वयं मान रहित होकर दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बड़ी भारी तपस्या की है, अथवा इसने सब जीवों पर सब जना अनुकंपा, सब जीव पर दया करके इसने कोई बड़ा भाई धर्म किया है।